ओम शांति। कल के बाबा के महावाक्य आप सभी के कानों में गूंजते होंगे, डबल लाइट बनो, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास। कल एक नया महावाक्य था बाबा की मुरली में, हरेक के सिर पर लाइट का ताज उतना ही है जितनी उसके अंदर माइट है। आज तक तो बाबा कहते आए लाइट के ताज का आधार प्योरिटी है, पर कल कहा शक्ति जिसके पास जितनी है सिर पर लाइट का ताज उतना ही है। शक्तियों के बारे में भी बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, अपने शक्ति स्वरूप को इमर्ज रखो। इन बातों पर आज हम कुछ चर्चाएं करेंगे। स्वमान भी इसके साथ है और एक बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है, जो बाप समान बनने के लिए आवश्यक है। क्या बताया? मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लीन और क्लियर। मन और बुद्धि दोनों को हम स्वच्छ रखें, मन में किसी तरह का डिस्टरबेंस न हो। नॉर्मल रूप से तो देखें तो हर मनुष्य सवेरे से रात तक किसी न किसी संकल्प के प्रभाव में रहकर जीता है। हम सभी ने जन्म जन्म अपने मन में और बुद्धि में जो कुछ भरा है, अब उसकी सफाई करने का समय है। बहुत कुछ भर लिया है, अगर हम अपने मन में झांक कर देखें तो दिखाई देगा उसमें क्या क्या भरा है, कैसी भावनाएं भरी हैं हमने दूसरों के लिए, हमारी वृत्ति में क्या समा गया है। हम जब इस संसार को देखते हैं तो ये संसार हमें कैसा दिखाई देता है, जब परिवार को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। जो कल बाबा ने हंसी की बात याद दिलाई कि बच्चों का दूर का नंबर चश्मे का तेज है, नजदीक का नंबर कमजोर है। माताओं ने भी समझ ली होगी ये बात, नजदीक का नंबर कमजोर है अर्थात अपने को देखना नहीं आता, दूर का नंबर तेज है, दूसरे साफ साफ दिखाई देते हैं। वैसे भी अपनी आंखें अपने को कम देखती हैं, दूसरों को ज्यादा देखती हैं। जन्म जन्म हम सभी दूसरों को देखते आए हैं, केवल इस समय अपने को देखने का मौका मिलता है। जो आत्माएं अपने को अच्छी तरह देखना जान लेती हैं, जिनको आ जाता है अपने को देखना, वो बाबा को भी देख सकती हैं, उसको भी जान सकती हैं। अपने को नहीं देखा तो अपने को पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे। कल बाबा ने मुरली में ये सब बातें हमारे सामने रखी हैं, मन को हम स्वच्छ कर दें। और फिर कह दिया जो बार बार कहते आए हैं कि लेकर तो तुम्हें जाऊंगा ही। साकार में बाबा की मुरलियां चलती थी कभी कभी, मैं महाकाल हूँ, तुम्हें पता है तुमने किसको बुलाया है, महाकाल को बुलाया है, इसलिए चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलने की तैयारी का अर्थ ये नहीं कि हम कह दे कि हम तो तैयार हैं चलो, साफ होकर ही जाना होगा। अगर हम स्वयं सफाई करेंगे तो मन जिसकी हम सफाई करेंगे वो हमें बहुत ज्यादा सुख देगा। अगर हम सफाई नहीं करेंगे, कोई और सफाई करे हमारे मन की, तो वो सफाई बड़ी कष्टकारी होगी। इसलिए हमें सफाई करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हम अपनी बुद्धि के द्वार अब बंद कर लें उन चीजों के लिए जो हमें इसमें भरनी नहीं है। हमारी बुद्धि ग्रहण शक्ति है, इसको पात्र कहते हैं। बाबा के शब्दों में अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाओ। ये हमारी बुद्धि बहुत सुंदर पात्र है। पहले हमें इस पात्र को खाली करना होता है और फिर इसमें भरना है। खाली करना भी जरूरी है, लेकिन खाली कर लेना ही संपूर्ण नहीं है। खाली करके हमें इसमें भरना है। अगर हम इसमें गंदगी भरते रहते हैं, अगर हम अपनी बुद्धि में दूसरों के अवगुण भरते रहते हैं, तो अच्छाई भरने के लिए उसमें स्थान नहीं बचता। हम क्या भरें अपनी बुद्धि में और क्या न भरें, हम विचार कर लें बहुत अच्छी तरह। बहुत सुंदर टॉपिक है, चेक कर लें अपने को, सारा दिन हम अपनी बुद्धि में क्या क्या भरते हैं। बुद्धि सर्वश्रेष्ठ खजाना है हमारे पास, जिसमें हम विवेक भरते हैं। ऐसा विवेक जो चारों युग हमारे साथ चलता है, ऐसा विवेक जो हमारे मन को सहज ही कंट्रोल कर लेता है, ऐसा विवेक जिसके आधार पर हम लाइट हाउस बनकर इस संसार के अंधकार को दूर कर सकते हैं। हम कैसा विवेक भरते हैं अपने अंदर। हम सभी के पास बुद्धि है, इसलिए भी हमारे पास बुद्धि है कि हम इस बुद्धि में क्या विवेक भरें और कौन सा अविवेक न भरें, सभी विचार कर लें। परिवार में रहते हुए भी क्या क्या भरते हैं अपने परिवार से। अगर इस विवेक में, अपनी वृत्ति में हमने घृणा भर ली है किसी के लिए, तो हम उसका परिणाम जानते हैं। घृणा हमारी आंतरिक शांति को, खुशी को नष्ट करती रहेगी, हमें पता नहीं चलेगा। अगर हमने अपनी वृत्ति में अहंकार भर लिया है, मैंपन भर लिया है, तो हमारे अंदर टेंशन रहेगा ही, हमें पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। बहुत सारी आत्माएं ये प्रश्न करती हैं, बुद्धि स्थिर नहीं होती, पता नहीं चलता क्या है। जब भी बैठते हैं तो दिखाई देता है कि मन बहुत ज्यादा भटकने लगा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। स्वप्न आते हैं, कैसे कैसे आते हैं पता नहीं चलता, कहाँ से आ रहे हैं, हमने तो न ऐसा सोचा, न कभी ऐसा जिंदगी में काम किया। लेकिन जन्म जन्म भरा है हमने अपने अंदर, हमारे मन में जो कुछ उठ रहा है, हमारे स्वप्नों में जो कुछ आ रहा है, हमारी कल्पनाओं में जो भी निकल रहा है, वो सब हमने भरा हुआ है। बिना भरे कुछ भी नहीं उभर रहा है, इसलिए और नहीं भरना है। पहली आवश्यकता इस चीज की है और दूसरी इसको साफ करना है। साफ करने के लिए आप जानते हैं, अगर हमें अपनी कैसेट में नई चीज भरनी हो तो दो तरीके होते हैं। वैसे तो एक ही है, पर दो होते हैं। एक है कैसेट में जो कुछ पहले से भरा हुआ है उसको हम ब्लैंक कर दें, धो दें, साफ कर दें। और दूसरा है कि कुछ भी भरा हो हम नया भर दें, पुराना मिट जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो कुछ भरा हुआ है उसके ऊपर जब हम कुछ भरते हैं तो नीचे के भरे हुए की सूक्ष्म वेव्स, तरंगे रह जाती हैं, और इसलिए थोड़े दिन के बाद वो कैसेट ठीक काम नहीं करती। अच्छा तरीका होता है हम कैसेट को पहले साफ कर दें और फिर भरे। अगर आप में से कुछ लोग जानते हो तो कैसेट को बिल्कुल ब्लैंक करने का, साफ करने का तरीका है, उसके ऊपर एक शक्तिशाली मैग्नेट रख दो एक मिनट के लिए, चुंबक, और वो सब धुल जाएगा। हम अपने मन को अगर साफ करना चाहते हैं तो योग तो उसका सुंदर तरीका है ही, पर उसका बहुत अच्छा तरीका, सरल तरीका स्वमान भी है। जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो इसको एक दूसरे शब्द के रूप में देखें, हायर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस एक है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, शिव बाबा की, सुपर कॉन्शियसनेस higher consciousness, high consciousness, ordinary consciousness, good consciousness, ये भी कह सकते हैं, higher consciousness, श्रेष्ठ स्मृति, सरल शब्दों में ऊंची स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति हमारे मन की धुलाई भी कर देती है और उसमें नया प्रिंट भी कर देती है, उसमें नया भर भी देती है और पुराने को साफ भी कर देती है। हम स्वमान की ओर चलें। बाबा ने कल हमें डबल लाइट की बात कही है, ये शब्द मुरलियों में आता रहता है। डबल लाइट का डबल अर्थ है, एक अर्थ है इसका हम अपने मन को हल्का रखें, बोझ से मुक्त। दूसरा, आत्मा लाइट है, ज्योति है, आत्मा भी ज्योति और मन भी हल्का, इसको डबल लाइट कहते हैं। दूसरा इसका अर्थ है आत्मा लाइट ज्योति और आत्मा के चारों ओर सूक्ष्म शरीर लाइट का, अर्थात जब हम डबल लाइट हैं तो हम फरिश्ते हैं। ये दो अर्थ हैं डबल लाइट के। मन को भी हमें हल्का रखना है और आत्मा लाइट है, लाइट के शरीर में है, इस फरिश्ते स्वरूप का भी अभ्यास करना है। पहले हम आपके सामने मन को हल्का रखने की कुछ विधि का वर्णन करेंगे, अनुभव युक्त विधि। इस संसार में हरेक मनुष्य का मन भारी है, ब्राह्मणों सहित। कोई संकल्प, कोई इच्छा, कोई कामना, मैंपन, अहंकार, बोझ, चिंताएं मनुष्य के मन को भारी रखती हैं। मन को भारी रखने के कुछ बाहरी कारण हैं और कुछ बहुत छोटे छोटे अपने कारण, बिना मतलब के कारण। जैसे मनुष्य दूसरों से बहुत कामनाएं रखता है, वो पूरी नहीं होती, मन भारी होने लगता है। मनुष्य एक इच्छा रखता है, वो पूर्ण नहीं होती, मन भारी होने लगता है। कोई कुछ कह देता है, मन भारी हो जाता है। इसके अलावा सांसारिक बोझ, समस्याएं, चिंताएं, ये भी मन को भारी करती हैं। इस संगम युग पर हम सभी को बाबा ने एक बहुत सुंदर वरदान दिया है, उसका फायदा उठाना है। रोज सुना है हम सबने, जिनको याद न हो वो इसको बहुत अच्छी तरह जान ले और याद कर ले। संगम युग पर भगवान हमारा है, हमारे लिए है, हमारे लिए वो बहुत कुछ कर रहा है। हमें इस बात को महसूस कर लेना चाहिए। केवल संगम युग पर हमारा उससे मिलन ही नहीं हुआ है, केवल हम उसके बन ही नहीं गए हैं, वो हमें तैयार भी कर रहा है और अपनी ओर से जितनी मदद वो आत्माओं को दे सकता है ड्रामा में उतनी दे रहा है। और उसकी एक विशेष मदद हम सबको है, इस मदद का फायदा उठाएंगे आप। मैं इससे पहले उन भाई बहनों के लिए जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं एक छोटा सा संकल्प दे रहा हूं, आप उस पर विचार करें। नेचर ऑफ गॉड क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, क्या नेचर है भगवान की? तो भगवान की एक नेचर है, जो भी उसके पास किसी भी कामना से पहुंच गया वो उसकी पूर्ण करता है, बशर्ते इसके कि हमारा उससे संबंध बहुत सुंदर हो, क्लोज हो, अपनापन हो। विशेष वरदान है संगम युग पर, बाबा ने कहा अपने सारे बोझ मुझे दे दो। आप इस एक महावाक्य पर ध्यान दें, इसको अपने जीवन का आधार बना सकते हैं और इस जीवन को लाइट कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं। अपने सारे बोझ मुझे दे दो। बहुत लोगों ने एक अनुभव किया सारे संसार में, आपने सुना होगा कैसेट्स में भी, कि रोज रात को बाबा के नाम एक छोटा सा पत्र आप लिख दें। जो भी मन पर बोझ हो, चिंताएं हो, कोई समस्या हो जीवन की, कोई गलती हो गई हो अपने से, वो सब बाबा के नाम लिख दें। छोटा सा 5-7 लाइन का पत्र, मधुबन पोस्ट करने के लिए नहीं, पहुंच गया लिखते ही वो ऊपर बाबा के पास। सवेरे आपको अनुभव होगा मन बोझ से मुक्त है। भगवान हम सभी को मदद करने के लिए तैयार है इस समय। हम जो मदद उससे लेना चाहें वो देगा। आप अपने जीवन की समस्याओं के लिए, मैं आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पर 15 दिन के लिए ये कहूं, यहां से जाकर आप 15 दिन एक प्रयोग कर लें अपने जीवन में। बहुत अच्छा हो कि यहां से जाकर 15 दिन आप एक भट्टी कर लें, अपनी व्यक्तिगत भट्टी, बैठने की भट्टी नहीं, कि मन के सारे बोझ बाबा को ही देने हैं। ये बोझ है मेरे मन पर, ये तुम्हारे हवाले, इसको तुम हल करो। दूसरा, जीवन में जो भी समस्या आ जाए वो भी बाबा के हवाले, और देखो क्या होता है। ये अनुभव है हजारों आत्माओं के कि आपका जीवन बोझ मुक्त, चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। आप देखते होंगे अपने जीवन में कि हम कुछ कर भी तो नहीं पाते, या हम कुछ कर सकते हैं? अगर हमारे पास 100 लोग सामने और हम उनसे पूछें कि क्या तुम अपनी चिंताओं में कुछ कर सकते हो? बच्चा बीमार है, पढ़ नहीं रहा, बुरे संग में आ गया, माँ बाप चिंतित हैं, क्या कुछ कर सकते हैं माँ बाप? सबका एक ही उत्तर होता है कि कर तो कुछ भी नहीं पाते, फिर भी चिंता करते हैं। चिंता ही कर सकते हैं और क्या करेंगे हम? लेकिन अगर हम अपनी चिंता बाबा को दे दें तो अनुभव होंगे, समस्या भी खत्म और हम भी आनंदित। क्यों ना हम बाबा के इस वरदान का लाभ उठाएं? एक लिस्ट बना सकते हैं आप, संगम युग पर बाबा से क्या क्या फायदा उठाया जा सकता है। केवल एक समय हमें मौका मिला है भगवान से फायदा उठाने का। मनुष्यों से तो फायदा उठाना हम जानते हैं, आपका कोई संबंधी MLA बन जाए कितना फायदा उठा लेते हैं उसका, सब जानते हैं। मनुष्यों से तो फायदा उठाना, भगवान से फायदा उठाना, इसलिए मैंने आपको एक संकल्प दिया है। भगवान का क्या स्वभाव है, आप 10 पॉइंट निकाल लें उसकी और उसका फायदा उठा लें। अब वो तैयार है हमारे लिए सब कुछ करने को। अगर आपका योग भी नहीं लग रहा है तो भी आप प्यार से बैठकर बाबा को कहो कि योग नहीं लग रहा, तुम ही कुछ करो, देखो योग लगेगा, इतना तो किया जा सकता है। तो हमें अपने को डबल लाइट करना है, इसलिए 5 ज्ञान के संकल्प आप अपने पास रख लें, जिनके द्वारा मन को हल्का रखें। आप स्वयं भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे महावाक्य हैं बाबा के, जिनको सुनते ही हमारा मन हल्का हो जाता है। एक संकल्प कि इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो सभी कल्याणकारी है, याद आते ही मन हल्का हो जाएगा। इस ड्रामा में जितनी भी आत्माएं हैं वो सब एक्टर हैं, उनका पार्ट निश्चित है, बदला नहीं जा सकता। हल्के हो जाएंगे आप। सामने खड़ा होकर बाबा हमें कह रहा है, बच्चे अपनी चिंताएं और बोझ मुझे दे दो, याद करते ही आप हल्के हो जाएंगे। सर्वशक्तिवान हमारा साथी है, सबसे बड़ी शक्ति, जिसका साथ मिलने पर संसार में और किसी के भी साथ की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारा साथी है, ये याद आ जाए तुरंत मन हल्का हो जाएगा। हम विजय रतन हैं, विजय सफलता होगी ही, आज नहीं तो कल, याद आते ही निश्चिंतता हो जाएगी। ऐसे और भी बाबा के महावाक्य हैं, आप लिस्ट बना सकते हैं। ऐसे महावाक्य आप अपने सामने रखें, लिख कर रखें सामने, पढ़ते रहें ताकि याद रहें। ये सिंपल बातें हैं परंतु भूल जाती हैं, बाद में याद आती हैं, जब मन बहुत परेशान हो जाता है। और महावाक्य हैं बाबा के जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, उनको अनुभव होगा। हम सभी कल्प वृक्ष के आधार हैं, आज भी था मुरली में, हम सभी कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। हम परेशान होंगे सारा संसार परेशान हो उठेगा, ये याद आते ही हम संभल जाएंगे। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हम शिव शक्तियां हैं। मंदिरों में भक्त हमारा दर्शन कर लेते हैं, विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं। हम वही दुर्गा हैं, शक्ति हैं। इस स्वरूप में आने से विघ्न नष्ट हो जाएंगे, ये सब याद रखना है। सभी इन बातों को जानते भी हैं, परंतु दो ही चीजों की आवश्यकता है, ये महान महावाक्य याद रहे और हम इनको अपनी प्रैक्टिस में लाते रहें। कल बाबा ने शक्तियों की बात थोड़ी सी की है, छोड़ दी उसको, फिर बहुत बार सुनाई है। अपने शक्ति स्वरूप को इमर्ज रखो। क्या है ये? कल फिर बाबा ने याद दिलाया कि बाबा का बनते ही बाबा ने सारी शक्तियां तुम बच्चों को अधिकार में दे दी हैं। शक्तियां हमारे पास हैं, हम यूज करें उसे। ये बात ऐसी है, हम जानते बहुत अच्छी तरह, ये बहुतों की समझ में नहीं आती। क्या है इसका अर्थ? शक्तियों को इमर्ज रखें। क्या है इसका अर्थ? कि हम समय पर शक्तियों को यूज करें। हम जानते हैं बहुतों को ये समझ में नहीं आता है। आप एक अभ्यास करके देखें, एक बहुत सुंदर स्वमान बाबा ने हम सबको दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कल भी कहा। इसको याद रखना ये है इमर्ज रखना, याद रखना, मैं शिव शक्ति हूं, सर्वशक्तिवान ने मुझे सारी शक्तियां दे दी हैं। ये याद रखने से ही हमें सब शक्तियां अनुभव में आएंगी। आपको कहीं निर्णय करना है, आपके परिवार में कोई विशेष बात है, आपको निर्णय लेना है, आप याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास निर्णय शक्ति है। फिर विचार करें तो यथार्थ निर्णय होगा। जिस शक्ति की भी आपको जरूरत है उसको इस स्मृति में लाएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और समेटने की शक्ति मेरे पास है। आप कभी भी योग में बैठें, आपको जरूरत है मन को एकाग्र करने की, आप स्वयं को ये संकल्प दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समेटने की शक्ति मेरे पास है, मैं अपने सभी संकल्पों को एक संकल्प से समेट सकता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अनुभव करेंगे कि मन का दौड़ना भागना शांत होने लगा। इमर्ज रखने का अर्थ होता है उस चीज को बार बार याद करना, बस इतना ही है। शक्तियां हमारे पास हैं, ये कल्पना की बात नहीं, हमारे सामने सर्वशक्तिवान बैठकर स्वयं हमें कहता है कि मैंने सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं अधिकार में, वो तुम्हारे ही पास हैं, तुम केवल उसकी स्मृति में रहो तो वो काम करती रहेंगी। शक्तिशाली व्यक्ति वही है जो अपने को शक्तिशाली समझता है, जो अपने को कमजोर समझते हैं वो कमजोर हैं। आपने दुनिया में देखा होगा एक बहुत लंबा चौड़ा मोटा ताजा व्यक्ति बहुत डरपोक रहता है, एक कमजोर पतला दुबला व्यक्ति बहुत पावरफुल रहता है। संकल्प की बात है, हमारे पास बहुत कुछ है, हम उसको याद करें, उसको बहुत अच्छी तरह समझ लें तो वो चीजें हमारे प्रयोग में होती रहेंगी। हमें अपने को हल्का रखना है, जो आत्मा जितनी हल्की रहती है वो उतनी ही शक्तिशाली बन जाती है। इस संसार में आप सभी के सामने विघ्न और समस्याएं बहुत आती हैं और बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे ये संसार विनाश की चपेट में आता जाएगा, यहाँ विघ्न और समस्याओं का जैसे तूफान चलेगा, मनुष्य परेशान हो उठेगा। हम सभी को आने वाली इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने को अभी से तैयार करना है। कल का महावाक्य सभी को अंडरलाइन करके अपनी बुद्धि में छाप लेना चाहिए कि जहां सर्व शक्तियां हैं वहां समस्याएं ठहर नहीं सकती। सीधा सा अर्थ, अगर कोई आत्मा इस नशे में रहती है कि मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान, समस्याएं उसके पास आएंगी ही नहीं, कितनी भी समस्याएं हों दूर से ही नष्ट हो जाएंगी। इस बात को भी कोई कल्पना न समझे, क्या है इसके पीछे रहस्य, हम सभी को मालूम होना चाहिए। सबसे गहरी थ्योरी है इस संसार की, सबसे गहरी फिलोसोफी है कि मनुष्य के आसपास जितनी भी समस्याएं हैं, जिन भी परिस्थितियों से कोई मनुष्य घिरा हुआ है, उसका कारण है उसके कमजोर संकल्प। हमारा हर संकल्प एनर्जी क्रिएट करता है, हमारा हर संकल्प कुछ रचता है। कमजोर संकल्प हैं तो विघ्नों की रचना होती है, शक्तिशाली संकल्प हैं तो विघ्न नष्ट होते हैं। विघ्न और समस्याएं कमजोर मन की रचना है। हम अनेक माताओं की बातें सुनते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव, परेशान है एक बहन अपने परिवार में, बहुत परेशान है, मरने की सोच रही है। उससे पूछने पर पता चलता है कि उसकी परेशानी का कारण, वो तो कहती है दूसरों का व्यवहार है, पर उसकी परेशानी का कारण उसका अपना कमजोर मन है। उसका मन शक्तिशाली होते ही पहले ही दिन उसे लगता है कि अब जीवन में कोई समस्या नहीं है, ठंडी हवा चलती है बाहर, जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वो उस ठंडी हवा में घूमते हैं, उन्हें आनंद आता है। जो कमजोर शरीर वाले हैं उनको सर्दी लग जाती है, बुखार हो जाता है। दोष ठंडी का नहीं है, अपने शरीर की शक्ति का है, कमजोरी का है। अगर हम स्वयं को शक्तिशाली बना लें, तो बाबा का ये महावाक्य सार्थक रूप से हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि कोई समस्या नहीं। इतना ही नहीं, आगे चलकर हम सब देखेंगे जिस स्थान पर एक शक्तिशाली आत्मा स्थित होगी उसके आसपास के लोगों की भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, उसके आसपास के एक बड़े घेरे के लोग समस्याओं से मुक्त, आपदाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे पढ़े लिखे लोग जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार हो जाता है, हर चीज अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेती है, हमारे वाइब्रेशंस भी चारों ओर एक क्षेत्र बना देते हैं, एक लंबा चौड़ा एरिया उस प्रभाव से प्रभावित रहता है और उसमें कुछ भी उल्टा सुल्टा होता नहीं। हम ध्यान दें अपने परिवारों में, अगर आप अपने परिवारों को समस्याओं से मुक्त रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सरल तरीका है, बैठकर या कामकाज करते हुए माताओं को अपने घरों में करना चाहिए, भाइयों को अपने ऑफिस में या कर्म क्षेत्र पर 10 बार मैं शिव शक्ति हूं, मुझसे चारों ओर शक्तियों के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, 1 मिनट करें आप बस, 10 बार करें, सवेरे शाम अच्छी तरह कर ले, आपके परिवारों में कोई समस्याएं नहीं रह जाएंगी, सब स्वतः ही ठीक होगा। स्वमान इतनी बड़ी चीज है, वाइब्रेशंस फैलते हैं इससे चारों ओर। हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में हमें एक सब्जेक्ट मिला था अपने स्पार्क की ओर से, स्पार्क आप जानते हैं जन सरोवर में एक डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे ज्ञान और योग के जो सिद्धांत हैं उन पर नई नई खोज की जाती हैं। तो 1.5 साल पहले संकल्प शक्ति हमें विषय मिला था और हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन सारे वर्ल्ड के इसमें जुड़े, बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग किए गए, इसके द्वारा चमत्कारिक अनुभव हमें प्राप्त हुए, चमत्कारिक अनुभव। मैं 1 मिनट में आपको एक बात कहूं कि आज तक भक्ति में, योग साधनाओं में, तंत्र विद्या के द्वारा लोग वस्तुओं पर लौंग इलायची इनमें शक्ति भर के खिलाते रहे, दूसरों को प्रभावित करते रहे, उल्टा सीधा मंत्र शक्ति और कुछ नहीं संकल्प शक्ति है। मंत्र शक्ति हमारे योग की शक्ति की भेंट में बहुत छोटी शक्ति है, मंत्र शक्ति स्वमान की शक्ति के भेंट में बहुत छोटी शक्ति है। मंत्र शक्ति अगर पदार्थों में प्रवेश कर सकती है तो हमारे महान संकल्पों की शक्ति वस्तुओं में क्यों नहीं प्रवेश कर सकती, करती है। अगर आप इस स्वमान में स्थित हो जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, योग युक्त हो जाए और आप हाथ में एक सेव ले लें, वो सारी शक्तियां उस सेव में भर जाएंगी, खिला दें आप उसे किसी को, आप पानी ले लें अपने सामने, उसको दृष्टि दें, इस संकल्प में स्थित होकर वो शक्तियां पानी में भर जाएंगी, पिलाएं वो दूसरों को, सब कुछ ठीक होने लगेगा। संकल्प शक्ति बहुत जबरदस्त शक्ति है, इस सारे संसार में संकल्पों का ही खेल चल रहा है, करोड़ों लोग अरबों लोग अपने उल्टे संकल्पों से इस संसार में तनाव पैदा कर रहे हैं, पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, मेंटल पोल्यूशन। एक योग युक्त आत्मा स्वमान के संकल्पों से, हायर कॉन्शियसनेस से थोड़ी देर में उन्हें नष्ट कर सकती है, इतनी शक्ति एकाग्रता में है। एक संकल्प पर अगर कोई आत्मा स्वयं को एकाग्र कर दे थोड़ी थोड़ी देर, तो वो संकल्प उसके लिए वरदान बन जाता है। हमें इन सब बातों का अभ्यास करना है। बाबा के इसी मिलन से पहले, कल से पहले, तीन दिन से पहले हमने अपने ग्रुप में और सभी विदेशियों को एक प्रैक्टिस दी थी करने के लिए, जो तीन दिन करनी थी कल तक उन्हें, और वो था, यही प्रैक्टिस थी जो बाबा ने कल कही, मैं फरिश्ता हूं, 108 बार सारे दिन में इसका अभ्यास करना था। अभ्यास इस तरह था कि अपने को इस शरीर में फरिश्ता देखेंगे और फिर अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता निकलकर ऊपर की ओर चलता हूं और बाबा को टच करता हूं ऊपर, बाबा से शक्तियां भरकर वापिस इस देह में आ जाता हूं, प्रवेश कर लेता हूं। 108 बार करना था, बहुतों ने किया, इसलिए कल का मिलन जिस जिसने किया उनका कल का मिलन उनके लिए यादगार बन गया, क्योंकि एक संकल्प में आत्मा सारा दिन स्थित हो गई तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति आ गई। हम इस बात को रियलाइज कर लें, जो भी बुद्धिमान भाई बहने हैं उन्हें संकल्प शक्ति के महत्व को समझ लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि हम अपने संकल्पों से ही बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी सारी उलझनों को नष्ट कर सकते हैं, समस्याओं का निदान कर सकते हैं, विघ्नों से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। हम संकल्प श्रेष्ठ रचने की आदत डालें, जिसके लिए बाबा ने पिछले साल बहुत अच्छी तरह सिखाया, लहर चलाई, निगेटिव नहीं पॉजिटिव संकल्पों की ओर चलो। मैं आप सभी से ये कहूंगा कि कलयुग के अंत तक आते आते अब पिछले 50-100 सालों में मनुष्य ने अपने अंदर बहुत निगेटिविटी भर ली है। उसका देखना, बोलना, सोचना, वृत्ति, कर्म करना निगेटिविटी से प्रभावित है, उल्टा उल्टा सब कुछ। इसको ठीक करना है, पॉजिटिव करना है। जब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं करेंगे हम श्रेष्ठ स्मृतियों का आनंद नहीं ले पाएंगे, जो बाबा ने कल अंडरलाइन किया है और सभी ने अपने जीवन में उस बात को समाया होगा। दूसरों पर उपकार करना स्वच्छ मन है, अपकारी पर उपकार करना स्वच्छ मन है। कितने सुंदर शब्द थे बाबा के, स्वयं के लिए या किसी के लिए भी व्यर्थ सोचना स्वच्छ मन नहीं है। बाबा हम सभी के मन को स्वच्छ करना चाहते हैं। हम भी विचार करें, उसको बनाना है, हमको बनना है। मैं अपने से पूछा करता हूं कि जितनी इच्छा बाबा को हमें संपूर्ण बनाने की है, क्या उतनी लगन हमें भी संपूर्ण बनने की है? पता चलता है नहीं। बनाने वाले को तीव्र उत्कंठा है, इन्हें जल्दी जल्दी बना दूं, और बनने वाले सोच रहे हैं बनाने वाला ही बना देगा, हमें क्या करना है। अगर दोनों की इच्छाएं समान हो जाएं, तो चमत्कार हो जाएगा, तेजी से हमारी स्थिति श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ेगी। कल बाबा ने हमें फरिश्ता बनने के लिए कहा, अब मैं आपके सामने फरिश्तेपन के कुछ स्वरूप रख दूं और फिर हम सभी यहां अभ्यास करेंगे। क्या है फरिश्ता? फरिश्ता बनना है हमें, या हम स्वयं को फरिश्ता मान लें, ये प्रश्न है। फरिश्ता बनना है या मान लें कि हम फरिश्ते हैं, क्या कहेंगे? कहा तो ये ही जाता है कि बनना है, पर बाबा हमारी इस फीलिंग को चेंज करता है, स्वमान को, हायर कॉन्शियसनेस को हम इस तरह समझें, एक है हमें फरिश्ता बनना है। अगर हम फरिश्ते की क्वालिफिकेशंस निकालें, बाबा ने बहुत बार सुनाई हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। उनको देख के डर जाता है मनुष्य कि बस फरिश्ते से दूर ही ठीक है, ये बनना तो मुश्किल काम है, इस जन्म में तो नहीं बन पाएंगे। लोग 60-65 साल में नहीं बने, हम 2-4-5 साल में क्या बन के करेंगे, इसलिए इससे भी हल्के रहो। ऐसा सोच के फरिश्ते बन की बात दूर हो जाएगी। माताएं क्या समझती हैं, बन सकते हैं फरिश्ते, बन सकते हैं, ठीक है बन जाएंगे ना। बाबा ने तो कह दिया कि बनाना तो मुझे है, तुम नहीं बनोगे तो मैं क्या करूंगा। नहीं, जबरदस्ती कैसे बनाएगा बाबा, फरिश्ता बनना जबरदस्ती कैसे हो सकता है, इंजेक्शन थोड़ा ही लगाया जा सकता है पकड़ के। जबरदस्ती का अर्थ है कि हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि हमें विवश होना पड़ेगा बनने के लिए। आपके सामने, किसी भी मनुष्य के सामने लगातार दुख ही दुख आते रहें, तो जो लोग मनोविज्ञान को जानते हैं वो समझ सकते हैं, तो आखिर दुख भी नेचुरल हो जाएगा, फिर दुख की फीलिंग नहीं रहेगी। जैसे सतयुग में सुख की फीलिंग नहीं रहती, क्योंकि सुख ही सुख है, कोई कंपैरिजन नहीं है। किसी के जीवन में रोज 10 विघ्न आ जाएं, बड़े बड़े विघ्नों से वो तंग भी होता रहे और 3 मास तक आते ही रहें, तो तंग होना छोड़ देगा कि नहीं, यही नहीं छोड़ते तो हम क्यों अपनी स्थिति छोड़ें, हो जाएगा ना ऐसे। इसलिए परिस्थिति ऐसी आए उससे पहले अगर हम फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास कर लें, तो आने वाले समय में हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमारा फरिश्ता स्वरूप बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है। वैसे तो फरिश्ता अर्थात जो आत्मा इस संसार से पूरी तरह उपराम हो गई हो, जिसके सभी बंधन समाप्त हो गए हो, जिसके सब विकर्म भी समाप्त हो गए हो, जिसकी बुद्धि एक में संपूर्ण रूप से स्थिर हो गई हो, जिसको इस संसार की कोई इच्छा तृष्णा अपनी ओर न खींचती हो, वो फरिश्ता है। परंतु हम सब जानते हैं ये बहुत ऊंची धारणाएं हैं। इसलिए हमें फरिश्ता बनना है, इस संकल्प को तो आप विदाई दे दें, हम फरिश्ते हैं। अब जरूरत इस संकल्प को अपने अंदर समाने की है, हम फरिश्ते हैं। तो आपको लगेगा कि फरिश्ते की जितनी क्वालिफिकेशन, फरिश्ते के जितने लक्षण आज तक बाबा ने सुनाए हैं, वो सब तेजी से जीवन में आने लगेंगे। लक्षण लाकर फरिश्ता बनना बहुत लंबी मंजिल है, फरिश्ता बनकर लक्षण ले आना सरल तरीका है। क्या है फरिश्ता स्वरूप, हम सभी को बहुत सहज रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे इस शरीर में सदा ही, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, शरीर में सूक्ष्म शरीर रहता ही है। कहां से बनता है ये सूक्ष्म शरीर, आत्मा जैसे ही परम धाम से शरीर में आई तो सूक्ष्म शरीर साथ नहीं लाती, सूक्ष्म वतन ही नहीं है, सीधी आत्मा गर्भ में प्रवेश कर लेती है। नीचे आते ही उसका मन काम करना जैसे ही शुरू करेगा, तो मन के संकल्पों की एनर्जी, मन के संकल्पों का प्रकाश सारे शरीर में फैलने लगता है और सूक्ष्म शरीर निर्मित हो जाता है। स्थूल शरीर और आत्मा के बीच हुए भी शरीर निर्जीव दिखाई देगा, कार्य नहीं कर सकती। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा ब्रेन से जुड़ी है, शरीर के अंग अंग से जुड़ी है। इसलिए भारतीय दर्शनों में कुछ विद्वानों ने ये मान लिया था कि आत्मा सारे शरीर में ही व्याप्त है। आत्मा व्याप्त नहीं है, सूक्ष्म शरीर व्याप्त है, आत्मा तो एक ही स्थान पर स्थित है। तो आप जरा अपने उस स्वरूप को अब देखो, आत्मा इस शरीर के अंदर लाइट के शरीर में बैठी है। दो शरीर एक आत्मा। आत्मा की जैसी स्थिति है, जैसे उसके विचार हैं, संकल्प हैं, उस अनुसार इस लाइट का रंग भी होता है। एक व्यक्ति बहुत पापी है, दुराचारी है, विकारी है, उसके संकल्प ही दूषित हैं, उसके संकल्पों की एनर्जी जो फैलती है उसका रंग काला हो जाता है, इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर काले रंग का होता है। जो आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाती है उसकी संकल्पों की ये एनर्जी सफेद रंग की हो जाती है, इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर सफेद हो जाता है, फरिश्ते सफेद दिखाई देते हैं। गुणों के आधार से, शक्तियों के आधार से, प्योरिटी के आधार से इस सूक्ष्म शरीर के रंग होते हैं, बदलते रहते हैं। तो हमारे इस तन में सूक्ष्म शरीर है प्रकाश का। मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं। अब जरा आप सभी एक मिनट के लिए, केवल एक मिनट, देखेंगे अपने तीसरे नेत्र से, बुद्धि से, कि मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में हूं, मुझसे चारों ओर लाइट की किरणें फैल रही हैं। स्थूल शरीर मानो लोप हो गया, है ही नहीं, चमकता हुआ हीरा आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान है। हम सभी अपनी स्वच्छ बुद्धि के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को देखने का अभ्यास करें। देखें इसे, सोचना और देखना दोनों हो योग अभ्यास में तो स्थिरता हो जाती है। केवल सोचना नहीं, संकल्प नहीं, देखना भी, थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग दोनों हो, एक बहुत सुंदर विजन हमारे सामने हो, चित्र हो अपना, उसको हम देखा करें, मैं ये हूं, इसके साथ आप अभ्यास करें। रोज सवेरे उठकर बाबा ने काम दिया हम सभी को, सवेरे उठ के अभ्यास करेंगे, इस तरह करेंगे, मैं इस शरीर में फरिश्ता हूं और इसको छोड़कर मैं ऊपर की ओर चलता हूं। बुद्धि से देखेंगे स्वयं को निकलते हुए, ऊपर जाते हुए, और बाबा से मिलकर वापिस उतरते हुए अपने को देखेंगे, शरीर में प्रवेश करते हुए, इस फीलिंग के साथ कि मैं फरिश्ता ऊपर से इस देह में आ गया हूं। किस लिए आया हूं खुद चिंतन कर लेंगे। अपने को आप एक नाम दे सकते हैं, मैं शांति का फरिश्ता हूं, प्रेम का फरिश्ता हूं, मैसेंजर फरिश्ता हूं, या पवित्रता का फरिश्ता हूं, या शक्ति संपन्न फरिश्ता हूं। एक काम निश्चित कर लें आप अपना, मैं प्रेम का फरिश्ता हूं, एंजल ऑफ लव, मुझे सबको प्रेम बांटना है, ताकि संसार में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की जो आंधी चल रही है वो शांत हो जाए। मैं शांति का फरिश्ता हूं, तो मुझे इस धरती पर शांति की स्थापना करनी है, ऐसे वाइब्रेशंस फैलाने हैं जो मनुष्यों के अशांत मन शीतल हो जाएं। अपने को एक स्वरूप निश्चित कर लो, केवल एक, सब नहीं। मैं शक्तिशाली फरिश्ता हूं, तो मुझे अपनी दृष्टि से सबको शक्तियां देनी है, बस। कल बाबा की मुरली में एक बहुत सुंदर बात थी, हम लोगों ने बहुत अभ्यास कराए हैं, इस पर किए भी हैं, नोट की होगी आपने, अपने को भी फरिश्ता समझो और दूसरों को भी फरिश्ता देखो। देख सकते हैं आपके सबके सिर के पीछे उनका फरिश्ता स्वरूप खड़ा है। भूल जाएं तो सवेरे शाम, बैठ जाएं कहीं और सामने आने जाने वाले लोगों को देखो, अपने घर में सभी लोगों को देखो कि सबके पीछे उनका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप खड़ा है। 5 मिनट ये एक्सरसाइज करें आप। इससे बाबा ने कहा उन पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा, उनका जीवन बदल जाएगा, आपके संबंध सुधर जाएंगे। जहां भी संबंधों में कड़वाहट हो आप उस व्यक्ति को फरिश्ता देखो, दूर से भी देखो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब अपना फरिश्ता स्वरूप स्पष्ट दिखता रहे। तो आप अभ्यास करें दिन में जितनी बार आप कर सकते हो, 10-25 उससे भी ज्यादा। माताएं घरों में रह के और ज्यादा अभ्यास कर सकती हैं। आपको अनुभव होगा कि अगर सवेरे 1-2 घंटा आप अनेक बार इसका अभ्यास कर लें तो सारा दिन यही संकल्प आपको स्वतः ही खींचता रहेगा और सारा दिन आप एक संकल्प में स्थित हो जाएंगे। आपको और कुछ योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा ऊपर है, उसकी किरणें निरंतर हमारे ऊपर पड़ रही हैं और हम इस देह में फरिश्ते हैं, चेतन फरिश्ते, शांति के फरिश्ते या पवित्रता के फरिश्ते। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है फरिश्ते स्वरूप के बारे में तो पूछ सकते हैं। ये सबसे सुंदर अभ्यास है सोते हुए। फिर से एक बार कम से कम 5 मिनट आप स्वयं को अच्छी तरह से इस स्वरूप की याद दिलाएं। ये सूक्ष्म शरीर ठीक वैसा ही शरीर लेता है जैसा हमारा स्थूल शरीर। इसमें दिखने वाले फीचर्स आंख नाक कान बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे हमारा स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर को देखकर ये पहचाना जा सकता है ये किसका सूक्ष्म शरीर है। ये शरीर के अंदर है लेकिन इसकी किरणें बाहर दूर दूर तक भी फैलती हैं। इसलिए आपने देखा होगा इंग्लिश में इसको ओरा कहते हैं, प्रभा मंडल। तो चारों ओर प्रभा मंडल दिखाया जाता है। आजकल बहुत सारी जो मेडिकल थेरेपी चल रही हैं, उनमें लोग दिखाते हैं किसी का 6 इंच बाहर तक ओरा है, किसी का 18 इंच तक है, किसी का 2-4 फीट तक है। ये तो है सांसारिक मनुष्यों का। लेकिन जो आत्माएं पवित्र हैं, योग करती हैं, उनका ये प्रभा मंडल कहां तक फैलता है? सारे संसार तक भी फैलता है, बहुत दूर दूर तक फैलता है। इसलिए अंदर इसकी वास्तविक स्थिति है और बाहर इसका प्रकाश है। फरिश्ते स्वरूप में स्थित होने से क्या विकर्म विनाश होते हैं, ये प्रश्न है इनका। बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये भी लोग पूछते हैं क्या फरिश्ते स्वरूप में स्थित होना ही सोल कॉन्शियसनेस है, आत्मविमानी स्थिति है, क्या इसको योग युक्त स्थिति कहा जाएगा? फरिश्ता स्वरूप क्योंकि हमारा स्वमान है, हमारी हायर कॉन्शियसनेस है। स्वमान और हायर कॉन्शियसनेस, श्रेष्ठ स्मृति, ये आत्मभिमान की श्रेष्ठ स्थितियां हैं। हम ये अभ्यास करें मैं आत्मा हूं, पहला अभ्यास है ये। हम ये अभ्यास करें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, आत्मभिमानी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है ये। हम ये अभ्यास करें मैं फरिश्ता हूं, आत्मभिमानी का बहुत सुंदर स्वरूप है ये। किसी भी स्वमान में श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होना आत्मभिमानी स्थिति है। रही बात विकर्म विनाश की, हम विकर्म विनाश को यथार्थ रूप में समझें। हमारे अंदर पाप कर्म समाये हुए हैं। सभी जानते हैं पाप कर्म मोटे रूप से तो नहीं होते, कहीं संकल्पों में समाये हैं, कहीं बुद्धि पर उनका पर्दा पड़ा है, कहीं संस्कारों में वो भरे हुए हैं। मोटे रूप से मेडिकली अगर जानना चाहें तो हमारे जन्म जन्म के किए हुए सभी अच्छे और बुरे कर्म सूक्ष्म तरंगों के रूप में हमारे मस्तिष्क में भी छपे हुए हैं। जो डॉक्टर हैं आप में से वो इसको जान सकते हैं, छपे हुए हैं हमारे ब्रेन में सब कुछ। जब हम अशरीरी होते हैं, जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, अर्थात जब हमारा मन और सभी संकल्पों से मुक्त एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाता है, तो हमारा ब्रेन, ध्यान से सुनेंगे आप, हमारा ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय। कुछ उन क्षणों के लिए हमारे ब्रेन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसलिए अगर लंबा समय ये स्थिति बन जाए तो उसमें जो तरंगे छपी हुई हैं वो नष्ट होने लगती हैं। इसको कहा जाता है विकर्म विनाश होना। ऐसे ही सोल कॉन्शियस होकर जब हम बाबा के स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं तो बाबा से आई हुई शक्तियां हमारे ब्रेन में छपी हुई तरंगों को नष्ट करने लगती हैं। तो जब हम फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो ये अभ्यास अकेला नहीं रह जाता, हम शिव बाबा से जुड़ जाते हैं, योग युक्त हो जाते हैं। इससे हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं, विकार भी ढीले पड़ने लगते हैं तेजी से, मन भी हल्का हो जाता है और हमारे मस्तिष्क में श्रेष्ठ तरंगे प्रिंट होने लगती हैं जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगी। और क्या पूछ रहे थे प्रश्न? ये तो देखिए, हाँ, ये ऐसा है, शास्त्रकारों ने और आजकल कई थेरेपीज में आपने पढ़ा होगा, सात तरह के शरीरों का वर्णन कर दिया है। कहीं भावनात्मक बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर, सबको थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर दिया है। इसके मूल में सिद्धांत केवल यही है, एक तो हमारा जो शरीर है उससे भी चारों ओर किरणें फैलती हैं। आप सब जानते ही होंगे जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, एक शरीर उसका भी बनता रहता है, कहीं एक नाम उसको दे दिया गया है। कहीं जब मनुष्य बहुत भावुक होता है उसके इमोशंस से भी किरणें फैलती हैं, एक शरीर उसका भी बनता रहता है, उसको लोगों ने इमोशनल बॉडी कह दिया है। ऐसे ही शरीर में चक्र मान लिए गए हैं, उनसे भी लाइट निकलती है, उसको एक और नाम दे दिया गया है। पर मूल रूप में बात यही है कि हमारे मन से जिस तरह के विचार प्रवाहित हो रहे हैं, उसमें जैसी भावनाएं या वृत्ति काम कर रही है, उस अनुसार हमारा ये शरीर बनता रहता है। इसलिए हम उसे एक ही नाम दे सकते हैं, सूक्ष्म शरीर। बहुत गहरा प्रश्न आपने पूछ लिया। लोग ऐसा सोचते हैं, इनका प्रश्न है कि बाबा जब दादी के तन में आते हैं तो क्या क्या है सूक्ष्म शरीर का, क्या क्या कनेक्शन है। जैसे ही दादी ध्यान में गई तो, या जैसे हम योग करते हैं, जहां भी हमारा मन और बुद्धि गया होगा वहीं हमारा सूक्ष्म शरीर भी पहुंच जाता है। ये तो बात क्लियर है ना। आप यहाँ बैठे कहीं और जगह का विचार कर रहे हो तो आप यहाँ तो नहीं होते। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है यू आर एब्सेंट फ्रॉम हियर, आप वहाँ हैं, आपका सूक्ष्म शरीर वहाँ है। हम योग कर रहे हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर ऊपर चला जाता है। शरीर में होते हुए भी सूक्ष्म शरीर की शक्तियां शरीर में काम नहीं करेंगी। दादी ध्यान में चली गई तो लिटरली प्रैक्टिकली उनका सूक्ष्म शरीर ऊपर स्थित हो गया, आत्मा शरीर छोड़ के गई नहीं, स्थिति ऊपर हो गई। आत्मा शरीर में है परंतु फुल कॉन्शियसनेस ऊपर है, मैं इसको ऐसे समझा है, आप में से जो डॉक्टर हो वो बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मैं इस ध्यान की स्थिति के बारे में बहुत दिनों से सोचता था कि ये क्या है। आत्मा भी वहीं रहती है और ध्यान वाले को लगता है वो वहाँ नहीं थी। योग में और ध्यान में बहुत बड़ा अंतर भी दिखाई देता है। तो योग तो ऐसे हुआ जैसे एक मनुष्य बहुत गहरी नींद में सो जाए, और ध्यान ऐसे जैसे वो स्वप्नों भरी नींद हो। तो जब कोई भी आत्मा ध्यान में जाती है तो मुझे ऐसे लगता है कि उस आत्मा का कनेक्शन ब्रेन के कुछ केंद्रों से कट जाता है। मेमोरी सेंटर, आंखों का सेंटर, कानों का, जीभ का। हमारे मस्तिष्क में शरीर के हर अंग को कंट्रोल करने के लिए एक केंद्र है ब्रेन, जिन केंद्रों के द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को कंट्रोल करता है, और आत्मा उसके पीछे कंट्रोलर है। तो जो मुख्य अंग काम कर रहे हैं, मुख, कान, आंख, मेमोरी, स्मृति, इससे उस आत्मा का कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। आत्मा वहीं रहती है। और बाप दादा जब आते हैं तो बाबा का कनेक्शन उन केंद्रों से जुड़ जाता है, इसलिए बाबा सारे शरीर को यूज नहीं करते, मुख्य रूप से मुख में, फेस में जो अंग हैं उनको ही यूज करते हैं। तो दादी जैसे ही ध्यान में गई, उनका सूक्ष्म शरीर ऊपर स्थित है और शिव बाबा ब्रह्मा तन को लेकर आए हैं, तो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर अब इस शरीर में कार्यरत होता है। और ठीक है, तो इनका प्रश्न है कि विकर्म विनाश करने वाली स्थिति बहुत लंबा समय नहीं रहती, एक दो सेकंड रहती है। विकर्म विनाश करने की स्थिति एक दो सेकंड क्यों? इसको आप बढ़ाएं, मिनट तक ले चलें और आगे बढ़ें, 15 मिनट तक ले चलें, आधे घंटे तक ले चलें, एक बार में 5 मिनट 10 मिनट तक करें, फिर इसको बढ़ाएं, विकर्म विनाश होंगे, लेकिन एक दो सेकंड पर्याप्त नहीं। अगर आपकी बुद्धि कम से कम 1 मिनट स्थिर हो बीज रूप में, तभी आप समझें कि विकर्म नष्ट होने लगे, और विकर्म नष्ट हो रहे हैं इसका स्पष्ट अनुभव आत्मा को होगा ही। हल्कापन, खुशी, संस्कारों में परिवर्तन, मन का बोझ ही हल्का लगेगा। तो एक तो सेकंड से काम नहीं चलेगा, इसे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूर है, उसको शांति और शक्ति कैसे दे सकते हैं? हमारे संकल्पों की स्पीड, संकल्पों की गति, उसके सामने दूरी का कोई महत्व नहीं। आप जानते हैं लाइट की स्पीड भी बहुत ज्यादा है, संकल्प की स्पीड तो लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा है। एक सेकंड में जिस आत्मा को आप कुछ देना चाहते हैं, एक सेकंड के लिए उसको इमर्ज करेंगे अपने सामने, और योग युक्त स्थिति में स्थित होकर बस अपनी किरणों का प्रवाह उसकी ओर करेंगे, तो अवश्य ही उसको शांति शक्तियों की अनुभूति होगी। तो अभी हम योग की ओर चलते हैं, हम योग अभ्यास, बोलो तो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, और इसको योग से जोड़ दो। अब आप आत्मा बन के शिव बाबा के पास और जाने लगो तो पावरफुल हो जाएंगे। हाँ, शिव बाबा के पास चलो, और आपको बाबा ने याद दिलाया कि आप दुर्गा हो, इसका अभ्यास करो। नहीं, 13 दिन की तो भक्ति की मान्यता है ना, ये मान्यता हमारी नहीं है। अच्छा, योग कर लें, पहले ब्रह्मा बाबा को, फिर ऊपर शिव बाबा को। सूक्ष्म शरीर हर जन्म में चेंज होता है क्या? हाँ, सूक्ष्म शरीर हर जन्म में चेंज होता है, हमारी स्थिति के अनुसार, पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार, तभी तो सब कुछ चेंज होता रहता है। फरिश्ता स्वरूप से शरीर के रोग कैसे नष्ट होते हैं? फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए कितना टाइम लगता है? फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए समय की तो कोई मर्यादा नहीं, कोई एक सेकंड में बन सकता है, किसी को एक साल लग सकता है, उस किसी को उससे भी ज्यादा। ये तो अपने अपने अभ्यास के ऊपर है। हमारे शरीर में जितने भी रोग पैदा होते हैं उनके पीछे एक दृष्टिकोण ये भी है कि वो शरीर की इम्प्योरिटी से पैदा हो रहे हैं। सभी रोगों का मूल, आजकल मेडिकल साइंस तो यहाँ तक पहुँच चुकी है, मूल है मन। मन की अपवित्रता, उसमें छुपे हुए विकार। जब हम फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो आप ये अभ्यास करें, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर पवित्र किरणों से बना हुआ है, मुझ आत्मा से पवित्र वाइब्रेशन सारे शरीर में फैलते हैं, पवित्र वाइब्रेशन से शरीर की इम्प्योरिटी भी नष्ट हो जाएगी और रोगों का निवारण करने में मदद मिलेगी। आप इसको करके देख सकते हैं, अनेक रोग ठीक किए जा सकते हैं मन में, मन से शरीर में पवित्र वाइब्रेशन फैलाकर। इसलिए बहुत अच्छे अभ्यास की आवश्यकता है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मुझसे पवित्र वाइब्रेशन फैल रहे हैं सारे संसार, सारे शरीर में, फिर संसार में। मैंने कई लोगों से ये अभ्यास कराए हैं जिनको ब्रेन में कुछ तकलीफ थी कि मैं आत्मा परम पवित्र हूँ ब्रेन के बीच में और मुझसे चारों ओर पवित्रता की सफेद किरणें ब्रेन में भर रही हैं। पांच पांच मिनट अभ्यास करना था और कई लोगों की वो तकलीफें ठीक हो गई पूरी तरह, क्योंकि ब्रेन में कोई भी ब्लॉकेज हो, कोई टेंशन हो, हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीजें, हाइपरटेंशन जैसी चीजें इस तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन हमें जरा ध्यान पूर्वक बार बार, अगर आप पांच मिनट एक बार नहीं कर सकते, एक मिनट और ऐसा दस बार अपने प्योर वाइब्रेशंस ब्रेन में और शरीर में फैलाओ। फैलाने का अर्थ है आप संकल्प करो फैल रहे हैं तो वो फैलते जाएंगे। ओम शांति। अभी हम सभी योग करेंगे तो हम 15 मिनट के योग में आपको पांच संकल्प देंगे और तीन तीन मिनट एक एक अभ्यास करेंगे। आप हम जो बात शुरू कर रहे थे उसी को चालू कर देते हैं अभ्यास में। मैं इस देह में फरिश्ता हूँ, दृष्टि की बात आप नहीं सोचेंगे, अपने में मगन हो जाएंगे, केवल अपने को देखेंगे। आत्मा हीरा जिससे रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, नीचे लाइट का सफेद शरीर, स्थूल शरीर है ही नहीं, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं जिससे सारा संसार आच्छादित हो रहा है। सफेद किरणें पवित्रता की किरणें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, परम पवित्र फरिश्ता।
आत्मान हूँ परम पवित्र आत्मा। एक मिनट के लिए मुझसे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैलकर मेरे ब्रेन को शुद्ध कर रहे हैं। लगातार पवित्र वाइब्रेशंस का फ्लो चारों ओर मैं आत्मा इस देह को छोड़कर एक सेकंड में चलती हूँ बाबा के पास परम धाम में, जहाँ सर्वशक्तिवान अपनी सर्वशक्तियों के द्वारा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। ऊपर ऑलमाइटी, नीचे मैं, उसकी अष्ट शक्तियों की किरणें निरंतर आत्मा में समा रही हैं। सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर मैं आत्मा वापिस इस शरीर में प्रवेश कर लेती हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ब्रेन के बीच विराजमान मुझसे चारों ओर शक्तियां फैल रही हैं। मैं दुर्गा हूं। अष्टभुजाधारी सारे संसार को शक्तियों का दान देने वाली, मैं इस देह में फरिश्ता हूँ। परम पवित्र फरिश्ता परम धाम से पवित्रता के सागर से पवित्रता की सफेद किरणें मेरे ऊपर उतर रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। पवित्रता की सफेद किरणों के नीचे मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर स्थित हूँ, शांति के सागर से शांति की किरणें निरंतर मुझे प्राप्त हो रही हैं और संसार की अशांत आत्माओं तक जा रही हैं। ओम शांति। अब एक गीत बजाएंगे और 3 मिनट फिर से हम सभी शिव शक्ति बनकर सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे बैठेंगे।
रिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। रिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। रिश्तों का देख लो के ताज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। एकता के ताज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। आत्मा का हंस गाए मिलन के गीत, भावना के ताल पर नर्तन करे नित प्री, नर्तन करे नित प्री। सद्विचारों की सदा गूंजे यहाँ संसार, निर्विकार ये परम राम है प्रकाश पारावार। वरिष्ठों का देख लो ते हैं जो तारे ज्योति बिंदु है आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। जगमगाते हैं जो तारे ज्योति बिंदु है आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। निराकार ये युग लोक में सुखों का आगार, चिरस्थाई है यहाँ सद्भावना और प्यार, सद्भावना और प्यार। झूमती हर पल यहाँ सदाए मत बहार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। वरिष्ठों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। वरिष्ठों का देख लो।